विश्व दर्पण।
श्रोताओ, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे सीरिया संकट की वर्तमान स्थिति और इस संकट के आधार पर क्षेत्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्तनों की। सीरिया में इस समय लड़ाई तो कई क्षेत्रों में हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाई हलब नामक क्षेत्र में हो रही है, जिसे एलेप्पो भी कहा जाता है। हलब में सीरिया की सेना और घटक बलों ने आतंकियों को घेर लिया है और उनकी सप्लाई लाइन काट दी है। आतंकी लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं और सीरियाई बलों की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। आतंकी संगठन भी अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं और आतंकियों की मदद करने वाले देश भी पूरी ताकत के साथ ये कोशिश कर रहे हैं कि हलब की लड़ाई में सीरियाई सेना को विजय न मिलने पाए। इस बीच कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिनका सीरिया की परिस्थितियों पर गहरा प्रभाव पड़ना तय है। तुर्की ने विफल सैनिक विद्रोह के बाद सीरिया संकट के बारे में अपनी नीति में बुनियादी बदलाव लाने की बात कई बार कही और तुर्की के कई अधिकारियों ने इस संदर्भ में बयान दिए हैं। तुर्की ने रूस के साथ अपना तनाव भी समाप्त कर लिया है और इसके लिए तुर्क राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन को रूसी भाषा में पत्र लिखकर सीरिया में रूस का युद्धक विमान मार गिराने पर माफी मांगी। तुर्क राष्ट्रपति अर्दोगान ने रूस का दौरा किया और व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी की। सैनिक विद्रोह के बाद तुर्की का झुकाव ईरान की ओर भी बढ़ा और तुर्क विदेश मंत्री मौलूद चाउश ओगलू ने ईरान का दौरा किया, जबकि ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ की अंकारा यात्रा में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की। ईरान और तुर्की के बीच संबंध बने हुए थे, लेकिन सीरिया संकट के मामले में दोनों देश एक दूसरे के विरोधी मोर्चे में थे। टीकाकारों का कहना है कि इस समय ईरान, रूस और तुर्की के बीच बहुत अच्छा समन्वय बना है। मध्य पूर्व के मामलों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विशेष दूत मिखाइल बोगदानोव ने भी ईरान की यात्रा की और फिर ईरान से कतर गए, जहां उनकी मुलाकात सीरिया के सरकार विरोधी संगठनों के नेताओं से हुई। ये यात्राएं ऐसे समय हो रही हैं कि जब तेहरान, मॉस्को और अंकारा के बीच सीरिया संकट के समाधान के लिए एक फॉर्मूले पर सहमति बन जाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान के वरिष्ठ टीकाकार इरफान अली का कहना है कि तुर्की भी शायद इस नतीजे पर पहुंचा है कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद उसने ये नया रुख अपनाया है।
तुर्की भी इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि उसके साथ जो है शायद जो है अमेरिका और सऊदी अरब ने कोई धोखा किया है, शायद मतलब जो है उसको ये बात समझ में आ गई है। अगर अर्दोगान साहब को काफ़ी देर से ये बात समझ में आ गई है पूरी दुनिया के और ख़ुद तुर्की के जो मतलब जो सीनियर सहाफ़ी दानिश्वर तज्जिया निगार जो है वो ये बारहा कह चुके थे कि ये जो शाम के मसले के ऊपर जो तुर्की का जो मतलब जो ओवरऑल जो रिएक्शन है या जो ओवरऑल उसकी पॉलिसी है ये तुर्की के अपने मफाद में नहीं थी, शुरू से नहीं थी। तो शाम से उसके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और मतलब जो है उन्होंने जो जो ये रजब अर्दोगान वाली जो पार्टी है अदालत इंसाफ वाली तो आज़ादी वाली तो मतलब इनको तो इनका तो शुरू से ये था कि जो है हम ज़ीरो प्रॉब्लम रखेंगे अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ। तो मतलब वो ख़ुद जो है वो ज़ीरो प्रॉब्लम वाली पॉलिसी से इनहराफ था तुर्की का, यानी कि जो उन्होंने ऐलान की थी, जो अपने वोटर्स को बताया था कि हम खारजा पॉलिसी अच्छी कर देंगे, ट्रेड अच्छा कर देंगे, तो वो उसमें तुर्की को माशी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुए थे और इस रीजन में एक आइसोलेशन की सी कैफियत थी उसकी, यानी कि ईरान के साथ उसके बहरहाल तजारती ताल्लुकात अच्छे ज़रूर थे, लेकिन शाम के मसले की वजह से एक सर्द मोहरी वाली बात तो आइडियोलॉजिकली जो है महसूस की जा रही थी।
प्रख्यात अरब टीकाकार अब्दुल बारी अतवान तुर्की की नीति में आने वाले बदलाव के कई कारण गिनवाते हैं।
السبب الاول هي تريد ان تكسر عزلتها مع الغرب الذي ادار له ظهرها. ثانيا تريد ان تحافظ على امنها وتواجه الارهاب.
अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि पश्चिमी देशों ने तुर्की को अलग थलग कर दिया था और तुर्की इस स्थिति से बाहर निकलना चाहता था। दूसरी बात यह है कि तुर्की को अपनी आंतरिक सुरक्षा की गहरी चिंता हो चली थी। तुर्की को आतंकवाद का सामना है, जिसने इस देश के पर्यटन उद्योग को तबाह करके रख दिया है। तुर्की की अर्थव्यवस्था 4% की दर से विकास कर रही थी, जो ध्वस्त होकर रह गई। शांति का माहौल खत्म हो गया। तुर्क राष्ट्रपति की मॉस्को यात्रा के साथ ही इस देश की करेंसी में सुधार आया। इसमें कोई संदेह नहीं कि अर्दोगान अपने देश, अपनी पार्टी और अपनी सरकार के हितों को सबसे अधिक प्राथमिकता देते हैं। अरब नेताओं की तरह वो नहीं है कि यदि किसी से दुश्मनी कर ली तो उसे अहम का मुद्दा बना ले। अर्दोगान को आर्थिक संकट, आतंकवाद और सैनिक विद्रोह जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तुर्की ने सीरिया में आतंकी संगठनों की मदद की तो उसकी इस नीति ने तुर्की को किस स्थिति में पहुंचा दिया। तुर्क सरकार को सैनिक विद्रोह झेलना पड़ा, आर्थिक दिवालियापन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, पर्यटन से होने वाली 36 अरब डॉलर की सालाना आमदनी से हाथ धोना पड़ा। जब ये स्थिति है तो रणनीति का बदला जाना जरूरी था। अमरीकियों ने भी तुर्की को धोखा दिया। अमरीका ने तुर्की के बजाय कुर्दों का साथ दिया, जिन्हें तुर्क सरकार अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानती है। इन्हीं कारणों से तुर्की ने अपनी नीति पूरी तरह बदल ली। अब्दुल बारी अतवान का यह भी कहना है कि रूस की इंटेलिजेंस ने तुर्की में होने वाले सैनिक विद्रोह को पहले ही भांप लिया था और इसकी सूचना तत्काल तुर्क राष्ट्रपति को दे दी, जिससे तुर्क राष्ट्रपति के लिए सैनिक विद्रोह को कंट्रोल करना आसान हो गया।
واستطاعت ان ترصد تحركات الوحدات المتمرده في الجيش التركي التي كانت تخطط للانقلاب وجرى تسريب هذه المعلومات الى الرئيس رجب طيب اردوغان।
इस बीच सऊदी अरब और अमेरिका जैसे देशों की भूमिका के बारे में भी चर्चा हो रही है, जो सीरिया में लड़ने वाले संगठनों की भरपूर मदद कर रहे थे ताकि सीरिया की बशार असद सरकार को गिराया जा सके। ये देश इस गलत फहमी में थे कि कुछ दिनों या हफ्तों में बशार असद की सरकार गिर जाएगी, मगर अब खुद इन सरकारों को भी यकीन हो चुका है कि बशार असद की सरकार, के जिसे जनता का समर्थन प्राप्त है, गिराई नहीं जा सकती। और इस सरकार को गिराने के लिए जो तरीके अपनाए गए और आतंकवादियों को जिस प्रकार प्रयोग किया गया, वो खतरनाक तरीका है और इसका नुकसान आतंकियों के समर्थक देशों को भी उठाना पड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के सिद्धांत के तहत सीरिया में सैनिक कार्यवाही शुरू की और इससे सीरिया की सेना और सरकार की स्थिति मजबूत हुई।
нашей группировки сирийская армия продолжает активные наступательные операции и при нашей поддержке освобождает все новые и новые населенные пункты. Кстати говоря, никто и не спорит.
इस्लामी गणतंत्र ईरान शुरू ही से इस बात पर जोर देता रहा है कि सीरिया संकट इस देश की जनता की इच्छा के अनुसार हल होना चाहिए, बाहरी हस्तक्षेप बंद होना चाहिए, आतंकियों की मदद रोकी जानी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री मोहम्मद जवाद जरीफ की हालिया अंकारा यात्रा में दोनों देशों ने सीरिया की अखंडता की रक्षा पर बल दिया और आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त रूप से प्रयास किए जाने पर जोर दिया। और विदेश मंत्री जरीफ ने तुर्की और रूस के बीच संबंधों की बहाली पर खुशी जाहिर की।
ما بسیار خوشحالیم که روابط دو همسایه بسیار مهم ما ترکیه و روسیه بهبود پیدا کرده و به سمت همکاری در منطقه‌ای که برای هر سه کشور ما مهم هست پیش رفتن. باید با افراط و تروریسم داعش و جبهه النصره در سوریه همگان مبارزه بکنن.
آتنکیوں کے ورود کارواہی میں ایران نے شروع سے ہی سیریا کی سہایتا کی اور اسی لکش کے تحت ایران نے روس کو اپنی حمدان چھاونی کے پریوگ کی अनुमति भी हाल ही में दी है। रक्षा मंत्री हुसैन देहकान ने इस संबंध में विभिन्न प्रकार के अटकलों का उत्तर देते हुए कहा कि हमने अपनी छावनी रूस के हवाले नहीं की है कि रूस इसे अपनी इच्छा के अनुसार प्रयोग करे, बल्कि हमने आतंकवाद से लड़ाई के निर्धारित लक्ष्य के तहत रूस को सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और यदि इस ऑपरेशन के लिए और सुविधाएं देने की जरूरत पड़ी तो उस पर भी विचार किया जाएगा।
مورد توافق طرفین در سوریه برای داعش
आतंकवाद की समस्या से निपटना बहुत जरूरी है और इसके लिए देशों के बीच आपसी सहयोग बहुत आवश्यक है, ये बात सब जानते हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान ने इराक में भी और सीरिया में भी आतंकवाद से निपटने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आतंकियों को करारी हार का सामना भी हुआ। ये एक अटल सच्चाई है कि यदि ईरान की सहायता न होती तो सीरिया और इराक में हालात बहुत बिगड़ जाते और इसका नुकसान सीरिया ही नहीं और इराक ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र और पूरे विश्व को उठाना पड़ता। بشار اسد کا کہنا ہے کہ سیریا کو جس پرکار کے آتنکواد کا سامنا کرنا پڑا ہے اس کے بارے میں ہم نے دشکوں بلکہ شاید شتابدیوں میں کوئی اور اداہرن نہیں دیکھا.
لم نسمع بمثلها خلال العقود الماضیہ او خلال القرون ربما الماضیہ بوحشیتها وبمضمونها.
انہوں نے کہا کہ میں پرارتھنا کرتا ہوں کہ جس استھتی کا سامنا سیریا کی جنتا کو کرنا پڑا ہے اس کا سامنا کسی بھی دیش کی جنتا کو نہ کرنا پڑے.
اولا لا نتمنى لأي دولة ولأي شعب ان يمر بمثل ما مرت به سوريا فما مر ما مررنا به هو غير انساني.
یہ بات بالکل صحیح ہے کہ وشو اور کشتر کی شکتیوں نے سیریا میں موت کا جو بھیانک کھیل کھیلا ہے اس کی جتنی بھی نندہ کی جائے کم ہے. سوارتھوں کے لیے رچی گئی اس سازش نے لاکھوں بے گناہ انسانوں کی جانیں لے لیں, دسیوں لاکھ لوگوں کو وستھاپت کر دیا اور ایک آباد دیش کو پوری طرح دھوست کر کے رکھ دیا. یہ صحیح ہے کہ سیریا کی سرکار جنتا کی مدد سے اس سازش کو ناکام بنانے میں سفل رہی, لیکن جو نقصان اس دیش اور کشتر کو پہنچا ہے کیا اس کی بھرپائی ہو پائے گی؟